शांति। आज भट्ठी का चौथा दिन है और आज का ये ज्ञान योग का सत्र, सायंकालीन सत्र, अंतिम सत्र है। और इस सत्र में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक निर्मल, पवित्र, पावन फरिश्ता हमारे बीच में पहुंचा है, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए इस धरा पर 1936 में अवतरित हुए और उससे एक वर्ष पूर्व 1935 में इस निर्मल फरिश्ते का लौकिक जन्म मुंबई महानगरी में हुआ। बाल्यकाल से ही दीन दुखियों की सेवा करने की इच्छा थी, इसलिए मेडिकल पढ़ाई की। और जैसे ही मेडिकल पढ़ाई की, ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। फिर तो आपने दोनों प्रैक्टिस साथ साथ शुरू की। बाबा की राय से 65 में क्लिनिक भी खोला और साथ साथ बाबा की ही राय से, ये पहली कन्या है जिनको पिता ने सेंटर दहेज के रूप में दिया। तो दोनों सेंटर और क्लिनिक चलाते रहे और दोनों रीति से सेवाएं करते रहे। और फिर आपके जीवन में गोल्डन लॉटरी आई 1971 में। दादियों ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना। 1971 से 78 तक आप विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों पर, आरंभ में तो लंदन, जहां से हम कहते हैं कि हमारा पहला ग्रुप विदेश सेवाओं के लिए गया था, लंदन गए, लंदन के आसपास के स्थानों की सेवा की पूरे यूके की। फिर अफ्रीका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए। इस तरीके से 71 से 78 तक अलग अलग स्थानों पे ट्रैवल करते रहे और सेवाएं करते रहे। और 78 में ऑस्ट्रेलिया भी 75 में विजिट किया था, पर चंद दिनों के लिए। लेकिन 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस बनाया और वहां पर 78 से 2009 तक करीब 30 वर्षों तक रहकर आपने वहां की बागडोर संभाली। आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं, जिसके अंतर्गत करीब 17-18 देश आते हैं। और फिर 2009 में आपके हाथों में बाबा ने ज्ञान सरोवर अकेडमी की बागडोर दी, आप वहां के डायरेक्टर हैं। और वर्तमान में बाबा ने आपको यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का भी पद दिया, वो भी जिम्मेवारी दी। इसके अतिरिक्त आप जो हमारी आईटी विंग है उसके भी चेयरपर्सन हैं और भी गुप्त रूप से बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। लेकिन फिर भी इस उम्र में एकदम हल्के, एकदम खुश मिजाज और बाबा की सेवा में हमेशा तत्पर, हमें भी सीखने को मिलता है। और दीदी बहुत बहुत मितभाषी है, हम जिस बात को कहने के लिए 10-15 वाक्य बोल देंगे और दीदी चंद शब्दों में वो बात कहकर खत्म कर देगी। तो ऐसे हमारी दीदी, जिनको बाबा ने निर्मल आश्रम का टाइटल देकर सुशोभित किया, आज हमारे बीच में है। हम कैसे दुआओं का खाता जमा करें, इस पर दीदी अपने अनुभव के आधार से मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। संगम युग का एक एक पल बहुत महत्व का है, समय, संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान, शक्तियां, खुशी और दुआओं का खजाना जमा करने का अब समय है। कमाई का समय है। इस एक जन्म में हम 21 जन्मों का जमा कर सकते हैं और 63 जन्मों के पाप खत्म कर सकते हैं। जितना जमा करेंगे उतना दे सकेंगे और जितना औरों को देंगे सुख शांति या जो भी उनको चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सब खजाने हैं, तो जितना हम औरों को देंगे दुआओं के खजाने जमा होते जाएंगे। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि 80% मुझे बाबा की दुआएं का मदद है, 15% ब्राह्मणों की दुआओं की मदद है और 5% मेरा अपना पुरुषार्थ है। तो बाबा भी किसको दुआएं देंगे, जो सेवा करते हैं उनको दुआएं देंगे और अंग्रेजी में एक कहावत है, आइदर यू यूज और लूज, आप जितना इस्तेमाल करेंगे फायदा है नहीं तो गंवाएंगे। तो इसलिए हमें इस समय बहुत ध्यान रखना है, वेस्ट कुछ ना करें। आज वातावरण दूषित होता है तो भी कहते हैं वेस्ट को बेस्ट में बदलो। तो जो भी देखते हैं प्लास्टिक की खाली बोतल का भी कुछ न कुछ श्रृंगार करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, जो मास्क फेंक देते हैं ना। एक आदमी यूके में वो जमा करके उसने उसका शर्ट बनाया आदमी का और अपने वीडियो पर भेजा, लाखों लोगों ने देखा, तो जैसे 8 बन गए। तो वेस्ट को बेस्ट में बदला, इसलिए व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं समर्थ बनो, समर्थ कर, वेस्ट करेंगे तो व्यर्थ गंवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे। और विशेषतर पास्ट को फिनिश करना है, फुल स्टॉप देना। क्या है कि हम पास्ट की बातों को भूल नहीं जा सकते। किसी ने दुख दिया है, किसी ने गाली दी है, किसी ने निंदा की है, किसी ने नुकसान किया है, भूल नहीं सकते। और उसमें समय व्यर्थ गंवाते हैं। अपना संकल्प व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए आजकल बाबा ये भी कहते हैं अपने ब्रेक पावरफुल हो, मनसा की, पास्ट को पास्ट कर दो, जो भी होता है ड्रामा अनुसार कर्म अनुसार कल्याण है उसमें, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है। कर्मों का हिसाब कहता किताब है ना, जो उसको हमने कुछ दुख दिया होगा, हमको दुख दी मिलता है, गाली दी होंगी, गाली मिलती है, तो संगम योग ये भी है हिसाब किताब चुप्त करने का, ये ख्याल में करके फुल स्टॉप। और बजट बनाओ, बचत का मेन बात ये है, जमा करने के लिए बचत करो। बचत की स्कीम बनाओ। तो बाबा आजकल कहते हैं विस्तार को सार में बदली करो। जो विस्तार से बोलते हैं सोचते हैं उसको सार में करो। तो आपका संकल्प समय बोल बच जाएगा। और विस्तार वृक्ष समान है, सार बीज है, तो बीज का क्या काम है, सारे वृक्ष को पानी पहुंचाना, शक्ति देना। तो बीज रूप स्थिति से हमको बहुत फायदा होता है। हमारे पुराने विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और हमारे संस्कार को बदलने की शक्ति मिलेंगे। तो इसलिए भट्टी में आज तो आपका कल लास्ट दिन होगा मैं समझती हूँ, तो भट्टी में यही एम रखना होता है कि पुराने स्पेशली जो है ना बीज रूप स्थिति में, क्योंकि चलते फिरते तो फरिश्ता स्थिति रह सकती है, पर बैठ कर जो योग करते हैं बीज रूप स्थिति हो, तो यहाँ से जाकर अभ्यास करके वहाँ भी अपना भट्टी चालू रखना है। ऐसे नहीं समझना कल भट्टी पूरी हो गई काम पूरा, नहीं, घर में भी रह के मधुबन जैसी दिनचर्या बनाओ। जैसे मधुबन में आप लोग कई तो शांति में मौन में भी रहे होंगे, अमृत वेला भी मिस नहीं किया होगा, और जितना भी समय मिला योग में, तो ये आदत जहां भी जाओ वहां करो। और हमारा लक्ष्य है बाप दादा ब्रह्मा बाबा समान बनना। तो अपने संस्कार बोल कर्म बाप दादा से मिलाओ, ब्रह्मा बाबा से। किसी बाबा तो निराकार है, हम कहेंगे निराकार को तो सहज है, आत्माभिमानी रहना, कोई मित्र संबंधी नहीं, कोई मोह नहीं, खाने का शौक नहीं, हाँ हम तो साकार में हैं, गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु आप हमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, उसका परिवार साथ में रहा 14 साल और फिर भी उन्होंने लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया। ट्रस्टी बनकर रहा, तो उनके साथ अपनी भेंट करो, दूसरे से भेंट नहीं करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, फलाना 20 साल से ज्ञान में है फिर भी ऐसा है, 50 साल से ज्ञान में है ऐसा है, हमारे में ये कमी है, हम तो नए हैं। महाराज जी लक्ष्य के लिए नहीं कहेंगे कि फलाना 50 साल से पुराना है, भले वो लक्ष्मी नारायण बने हम राम सीता बने, ऐसे नहीं कहेंगे। लक्ष्य सभी का है, आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, चाहे 1 साल वाले है चाहे 50 साल वाले है। तो इसलिए अपने आप को ब्रह्मा बाबा के साथ भेंट करो और समान बनने का यह लक्ष्य रखो, तो हमारा समय शक्ति बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। अंतर्मुखी बनकर सब कार्य करना है, आत्म अभिमानी और अंतर्मुखी, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं या सेंटर भी रहते हैं, कारोबार तो करनी ही है। अंतर्मुखी आत्म अभिमानी बनकर करो और अपनी स्थिति बनाने का लक्ष्य हो कि बहुत पावरफुल स्थिति हो, इतनी शक्तियां जमा करो जो कोई भी विघ्न आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सके, सिर्फ अपने प्रति नहीं हम औरों को भी मदद कर सके, इतनी जमा हो जो हमको न बाप दादा से न औरों से शक्ति लेने की दरकार रहे या वरदान लेने की दरकार रहे। जैसे कोई बड़ा परिवार होता है ना, तो क्या करता है, बजट बनाते हैं कि इतना खर्चा हम खाने पर करेंगे, इतना खर्चा हम खरीदारी पर करेंगे, ये रेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अपना सारा बजट बनाते हैं। और हमारा कितना बड़ा परिवार है, सारा विश्व हमारा परिवार है, सारे विश्व का कल्याण हमें करना है ना, तो अपनी बुद्धि वाणी समय कर्म का बजट बनाओ, दिनचर्या बनाओ कि कहाँ कहाँ कितना समय देंगे, शक्ति देंगे, चार्ट लिखो, डायरी में लिखो अपना कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बड़ा परिवार होने के कारण इकोनॉमी करते हैं, शक्तियों की बचत करो। और ये जमा का खाता 21 पीढ़ी भरपूर रहे उतना जमा करना है। सारे दिन की दिनचर्या और चार्ट लिखो। हमारी दिनचर्या साधारण ना हो, संकल्प बोल कर्म साधारण ना हो, बस खाया पिया सोया, नहीं कुछ विशेष कार्य करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है। और हमारा बोल है उस पर भी ध्यान रखना है कि हमारा बोल रफ डफ ना हो, गुस्से वाला ना हो, इसलिए सहनशील भी बनना पड़े, धैर्य व्रत भी बनना पड़े गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, और हर एक से आत्मिक स्नेह भी हो तब तो गुस्सा नहीं होगा। तो हमारा बोल ऐसा हो जो ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाए, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाए, औरों को उमंग उत्साह खुशी में लाए, हमें महादानी बनना है। महादानी क्या करते हैं? दानी होते हैं, 10% अपना देंगे औरों के लिए कमाई का। महादानी क्या है? अपना भी ख्याल नहीं करेंगे, भोजन करते समय कोई मांगने आया पहले उनको दे देंगे, तो बिल्कुल निस्वार्थ। और नहीं, आगे राजा हैं क्या करते थे, जो भी अपने द्वार पर आते थे उसको दान देते थे, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो हमारे सामने भी जो आए, कोई भी बिगड़ ज्ञान या शक्ति लेके ना जाए, खाली हाथ ना जाए, सबको कुछ न कुछ देना ही है। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे, आंगन में चक्कर लगाते थे ना, जो भी मिलता था कुछ न कुछ महावाक्य बोलते थे। हम लोग कभी शाम को 5:30 बजे बाबा या अपने बाहर आंगन में, नहीं यहाँ जो बाबा का कमरा है जहाँ चप्पल उतारते हैं, वो थोड़ा 3 दीवार से बंद था, ऊपर से खुला होता था, तो वहाँ बाबा खटिया पर लेटते थे, हम लोग जाते थे, कुछ न कुछ महावाक्य, चलते फिरते भी कुछ न कुछ महावाक्य बोलते थे। तो इसी रीत से कोई भी खाली हाथ न जाए, और हमको उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना है। प्रकृति के भी पावन बनाना है चतुर प्रधान, तो ऐसे वाइब्रेशन देने हैं योग के, क्योंकि आजकल साइंटिस्ट ने भी क्या देखा है कि जिस घर में शांति होती है ना, वहाँ के पेड़ जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वो पेड़ पौधे भी जल्दी नहीं बड़े होते हैं। तो हमें चलते फिरते, आजकल तो कई ऐसे हैं जो वृक्ष को भी गले लगकर प्यार देते हैं, तो हमें दृष्टि देकर, हम लोग गले नहीं लगते हैं पर दृष्टि देकर वाइब्रेशन में, जैसे योग की खेती करते हैं कितना फल बड़ा होता है, सब्जियां बड़ी होती है। और विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे, तो पहाड़ को रुई बना दो, छोटी समस्या को बड़ी नहीं बनाओ, बड़ी को छोटी बनाओ। जैसे देखो, आप लंबे रास्ते जाएंगे तो क्या होगा, थक भी जाएंगे, सांस भी फूलेगा, और शॉर्टकट करेंगे आपका समय भी बच जाएगा, सांस भी नहीं फूलेगा। तो इसलिए हमें विस्तार को सार में लाना है। परखने की शक्ति बढ़ानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ानी है। तो उससे क्या होगा कि हमारी शक्तियां बच जाएंगी, समय बच जाएगा। और जितना याद में रहेंगे, हमारा विकर्मों का बोझा हल्का हो जाएगा, और जितना हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और जो उड़ने वाले हैं समस्या पार कर लेते हैं। समस्या नीचे रह जाती है, खुद ऊपर रह जाते हैं, उड़ते हैं। और ट्रस्टी समझने से, करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूं, तो अपने को निमित्त समझ कर अपना परिवार को चलाएंगे तो क्या समझ होगा, हल्के रहेंगे, नहीं तो समझते मेरी जिम्मेवारी है, भारी हो जाते हैं ना, मेरी जिम्मेवारी समझने से भारी हो जाते हैं। तो इसलिए एक पहाका है गुजराती में, हूँ करूँ एज अज्ञानता, सकट नव भार जैम स्वानता ने। वो कुत्ता है ना, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, पर समझता है जैसे मैं ही बैलगाड़ी चलाता हूँ, ऐसे हम समझते हैं हम ही परिवार चलाते हैं। बाबा कहता है मैं जिम्मेवारी लेने तैयार हूं ना, तो बाबा को जिम्मेवारी नहीं देते, हम अपनी जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये भी है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना काम काज डिवाइड करो, क्या है, यहाँ तो माताएं काम नहीं करती है, यहाँ कौन सी बहनें हैं जो नौकरी करती है, जरा हाथ उठाओ, कितनी माताएं हैं जिसमें जो घर भी चलाती है और नौकरी करती है। तो अच्छा, विदेश में तो क्या है, नौकरी भी करते हैं, घर भी चलाना होता है। मैं एक एग्जाम्पल देंगी, हमारे पास एक फिजी में माता थे, मैं ये समझो 30-40 साल पहले की बात करती हूँ, उसके पास उसके अपने दो बच्चे थे और दो उसके ननंद के बच्चे थे, जो क्योंकि वहाँ तो गांव में, यहाँ भी ऐसे होगा, गांव में जो परिवार वाले रहते हैं शहर में अपने परिवार को बोल देते हैं, ये हमारे बच्चे को पढ़ाओ यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हमारे गांव में इतनी एजुकेशन नहीं है। तो उसके दो ननंद के बच्चे भी थे, चार बच्चे थे, 14-15 साल के थे, पढ़ते थे। अब माता को सवेरे से उठकर चार बच्चों का नाश्ता बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सुखाना, भल मशीन में भी धोते तो भी सुखाना तो पड़ता है, कपड़ा सुखाना, प्रेस करना, आंगन साफ करना, वहाँ तो नौकर भी नहीं होते हैं, आंगन साफ करना, घर साफ करना, खाना पकाना, तीन टाइम तो खाना होता है। तो और फिर समय मिलता था तो पति के शॉप में जाकर मदद करते थे, तो उसको न योग का टाइम मिलता था अमृत वेले, न मुरली का। तो क्या है, बैलेंस नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं 8 घंटा आप नौकरी करो, 8 घंटा भले अपना शरीर के लिए सोना खाना पीना करो, परंतु 8 घंटा योग और ज्ञान और सेवा में दो। चलो 8 घंटा में दो, कम से कम 2 घंटा तो दो। तो क्या है कि कई बार बैलेंस नहीं रखते हैं और जिम्मेवारी डिवाइड नहीं करते। विदेश में तो क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं तुम अपना सब कुछ करो, और बच्चों को, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, उसकी 6 के बच्ची थी, उसको सारी चंचलता करती थी, 10 मिनट घर में लॉक करके रखती थी उसके कमरे में, चंचलता की, आज तुमको तुम्हारा फेवरेट कपड़ा नहीं मिलेगा, फेवरेट खाना नहीं मिलेगा। और लंदन में एक माता थी, 2 बच्चे थे, पति पत्नी दोनों ज्ञान में थे, तो क्या करती थी माता, कहती थी एक दिन आप जाओ क्लास में, एक दिन मैं जाऊंगी, और इल्फर्ड से लंदन तक मुरली सुनने माता जाती थी, ट्रेन लेकर, बस लेकर, जो भी है, एक बच्चा को ले जाती थी छोटे को, बड़ी बच्ची को पति को कहती थी आप तैयार करके स्कूल में छोड़ के आओ। और उस माता ने ड्राइविंग सीखा, पहले ड्राइवर लेके जाती थी, कोई ब्राह्मण ड्राइवर के साथ जाती थी, पीछे खुद ड्राइविंग सीखा, ड्राइविंग करके बच्चे को लेकर आती थी। तो पढ़ाई का शौक होता है ना, तो कैसे भी करके क्लास मिस नहीं करते, और टर्न बना दिया कि आपका भी हक है मेरा भी हक है। तो विदेश की माताएं तो मजबूत होती है। तो समझो नौकरी भी करती है और सब कुछ, क्या क्या, न्यूजीलैंड में हमारी गुजराती माताएं, पेंटिंग करना, उन दिनों में शुरू में तो वॉलपेपर लगाते थे, तो उसमें भी मदद करना, बल्ब बदलना है, ये जाता है, सब मदद करते थे। पर भाई लोग क्या है, न्यूजीलैंड में भी माताएं कंप्लेन करते थे, हम नौकरी भी करती है, सब कुछ करते हैं, और भाई लोग थाली हाथ में दो, गरम गरम चपाती हाथ में दो, बर्तन भी साफ करो, कपड़े भी धुलाई करो। तो कई बार ऐसे करते हैं। तो समझो जिम्मेवारी जितने बांट कर रखेंगे ना, तो क्या होगा कि अपने को समय मिल जाएगा पढ़ाई का और सेवा का। बाबा कहते हैं सफल करो सफलता को पाओ। अपना ताना माना धन वचन कर्म सफल करो, साधारण ना हो, श्रेष्ठ हो। और अटेंशन रखना है, क्योंकि देहाभिमान के पुराने रतम रसम रवाज पर चलने की इतनी आदत है ना, तो हम कई बार टाइम वेस्ट करते हैं। शादी में तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे की शादी में कौन आएगा। सफेद कपड़े पहन के जाएंगे तो सब बोलेंगे यार देखो रोज सफेद कपड़े पहन के चल पड़ी, बच्चों का ख्याल नहीं करती है, पड़ोसी पड़ोसी भी निंदा करेंगे। सामना करना पड़ता है हिम्मत, ज्ञान में चलने में हिम्मत बहुत चाहिए और निश्चय चाहिए। हमारा रजिस्टर क्लीन हो, जितना जितना योग लगाएंगे मन पवित्र रहेगा। तो आजकल बाबा कहते हैं मन वचन करण और स्वप्न में भी पवित्रता हो, अपवित्रता का अंश मात्र न हो। कोई भी अपवित्रता होंगे, चाहे देहभान है, अहम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो भी है, सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में है, तो क्या होगा, हमारा समय शक्ति धन व्यर्थ जाएगा। लोभ होगा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, खरीद लो, कितने भी साड़ियां होंगी पर ये लेटेस्ट डिजाइन की लेटेस्ट कलर का कपड़ा बहुत अच्छा है, खरीद लो। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो मालूम नहीं है, हांगकांग में हमारी माताएं हैं, फंक्शन में जाना है पहले हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, ब्यूटी सलून में जाएंगे, गुजरात में भी मुझे मालूम है नवरात्रि आई, भाई बहने सब नया ड्रेस, और कहाँ कहाँ रवाज होता है, शादी में माँ बाप भी डांस करते हैं, तो डांस के स्टेप सीखने जाते हैं कि शादी है घर में। मतलब सामाजिक रूढ़ियों में अपना समय शक्ति धन गंवाते हैं। तो ये देखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो मर्यादाओं पर हम पक्के रहे। और याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। दोनों करना। ऐसे नहीं सेवा में इतने बिजी हो जाए जो रात को 11 बजे 12 बजे तक सेवा करे और फिर समरवेरे अमृत वेला उन शांति या झुटका खाते रहे। ये नहीं हो, बैलेंस। सेवा करते करते याद में रहें और जब याद में बैठो तो सेवा का ख्याल नहीं करो, बीज रूप स्थिति में बैठो। तो जितना हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, क्योंकि बाबा ने तो सारे दिन के दिनचर्या बता दी है, अमृत वेला जरूर हो, मुरली जरूर हो। आजकल तो लॉकडाउन के कारण कई सेंटरों पर लोग जा नहीं सकते हैं, कम से कम आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, घर में आपके टीवी है तो पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल पर मुरली आती है, टीवी नहीं है तो मोबाइल फोन तो है ही, उस पर भी मुरली आती है। तो मुरली सुनने बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करना। पहले मन का भोजन, फिर शरीर को भोजन। और सारे दिन में कर्मयोगी जीवन, कर्म करते करते योग लगाओ। ऐसे नहीं कि खाना पकाते सोचो कि लड़के को ये अच्छा लगेगा, लड़के को ये अच्छा लगेगा, पति को ये अच्छा लगेगा, सासु को ये अच्छा लगेगा, उनके बारे में विचार नहीं करना है, उनको याद नहीं करना है। बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाओ। तो घर में भी रहकर ट्रस्टी बनकर रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा भोजन, बाबा के भंडारे से जैसे आप खाते हो। और शाम को भी जैसे सब सेंटरों पर आधा घंटा घंटे की योग की पट्टी होती है, कम से कम आधा घंटा शाम को निकाल के योग करो। स्पेशली जो नौकरी नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं, तो जब भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। और धीरे धीरे फिर क्या करो, फरिश्ता बनकर एक्टिविटी करो। पहले तो आत्माभिमानी बनने का पहला लेसन बाबा ने दिया, दूसरा स्टेज है फरिश्ता स्टेज। तो चलते फिरते अपने को फरिश्ता समझ कर चलो, शरीर का भान भूल जाए। और फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहन कर घूमो और कोशिश करके जब भी टाइम मिले, जब भी बैठते हैं खास अमृत वेला शाम को, बिंदी रूप स्टेज में रहो। विकर्म विनाश करने हैं, कर्मातीत बनना है, लक्ष्य कभी न बोले। अपने को साधारण नहीं समझना है, योगी तपस्वी है, परिश्रमी है, इस स्मृति में रहकर अपना कार्य करो। तो इससे क्या होगा कि अपनी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और जैसे शुरू में बताया, जितना हमारे में शक्ति होंगी, जितने खजाने भरपूर किए हैं, तो औरों के देते जाएंगे, औरों को देते जाएंगे तो दुआएं मिलती रहेंगी। तो इसलिए बाबा तो कहते हैं, गृहस्थ में रहते भी अपने घर में चित्र लगे पड़े हो। कितनों के घर में चित्र है? काफी अच्छा। हाँ, घर में चित्र हो, जो भी आवे उसको ज्ञान देते रहो। मैंने जब 65 में अपनी डिस्पेंसरी शुरू की, तो डिस्पेंसरी में भी झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा। तो क्या है, अड़ोसी पड़ोसी वाले दवाई भी लेते थे और हमारा डिस्पेंसरी बराबर जब बंद होता था तो आसपास की माताएं आती थी, वो भी फ्री हो जाती थी अपने घर के काम से, आकर ज्ञान देती थी। तो कोर्स भी कईयों ने किया, कईयों ने डिस्पेंसरी में किया, कई फिर सेंटर पर आकर करते थे। सेंटर तो एक साल के बाद शुरू किया, परंतु डिस्पेंसरी में ही कईयों ने कोर्स किया। तो इसलिए क्या है कि जब लक्ष्य है तो जो भी मिलते हैं या जहाँ भी जाते हैं, बाबा कहते चलो शादी में जाना पड़ता है या कहाँ भी कोई मर गया वहाँ जाते हैं, ज्ञान दो। ज्ञान देने के अर्थ जाओ, सेवा अर्थ जा, समाज के रस्म आवाज नहीं, परंतु सेवा अर्थ। जो जहां भी जाओ, जाओ पले जाओ। परंतु ऐसे नहीं कि शादी में गए खाना पड़ता है ना, नहीं, ये नियम अपना पक्का रखना कि कहां भी, चाहे अपने माँ बाप के पास भी जाओ यदि ज्ञान में नहीं है, खाना नहीं, सेवा करो प्यार से, कभी बहाने से कि आज तो हमारा सोमवार है, कोई कहेंगे आज तो हम मंगलवार करते हैं, गुरुवार करते हैं, शुक्रवार करते हैं, शनिवार करते हैं, श्रावण मास है, एक ही टाइम खाते हैं, बहाना बता सकते हैं। कभी कभी जाते हैं तो, रोज जाते हैं तो घर वाले समझ जाएंगे कि ये झूठ बोलते हैं। तो ये है, प्यार से अपना नियम बता दो। विदेश में तो बहुत अच्छा है, किसी को कहेंगे ना हम आपके पास आके खाने पकाएंगे तो बहुत खुश होंगे, खाना पकाने के झंझट नहीं। आज हमारे पास एक न्यूजीलैंड में बहन थी, पार्लियामेंट में काम करती थी एमपी के साथ, तो उसको पार्टी अरेंज करना होता था, तो पार्टी अरेंज करती थी औरों के लिए, सब खाना भले ऑर्डर करती थी, अपने लिए फ्रूट प्लेटर, और फ्रूट प्लेटर में जब वो लोग सर्व करते हैं ना तो क्या करते हैं, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई सफेद है, कोई पीला है, ऐसे ऐसे फ्रूट ऐसे अच्छे रीत से अरेंज करते हैं। तो बाजू वाला कहता था आपका तो फ्रूट प्लेटर बहुत अच्छा है, और क्रिसमस की पार्टी होती थी, वो बहन सेंटर पर रहती थी और गुजराती माताएं थी वहाँ, तो सेंटर से मुठिया ये वो कुछ बना के ले जाती थी और खुद अपना ही खाती थी, बाकी सबके लिए शेयर करती थी। तो कई बार सब उनका अच्छा मानते थे वेजिटेरियन खाना। तो ये है, दूसरा भी मिसाल है, कई ऑफिस में एक भाई था, रोज अपना वेजिटेरियन सब्जी बना के रोटी सब्जी ले जाता था, तो आसपास के खाने वाले फ्रेंड कहते थे आपकी सब्जी अच्छी होती है दो हमको। तो विदेश में तो कोई कोई तो मजाक भी उड़ाते थे। एक बच्चा था, उसके स्कूल का टीचर उसकी सैंडविच देखता था, वेजिटेरियन अंदर सलाद वगैरह भरा होता था, तो कहता है ये क्या घास खाता है। तो मजाक भी उड़ाते हैं कोई, परंतु कई बच्चे फिर बच्चों की सेवा करते हैं। और जब से वहाँ एक फिल्म आई, बेब करके एक फिल्म आई, जिसमें सब पशु पक्षी बातचीत करते हैं क्रिसमस के दिन पर, वो लोग मुर्गा वगैरह कुछ काटते हैं, तो हाँ वो देखकर कई लोग वेजिटेरियन हो गए। और एक परिवार में दो बच्चे थे 9 और 11 साल के, उन्होंने फिल्म देखी कि कैसे कसाई लोग हैं कारखाने में गौ हत्या करते हैं। तो फिल्म देखकर आकर बड़ा बच्चा कहता है मम्मी अभी से मैं मांस नहीं खाऊंगा, छोटा बीच कहता है मम्मी अभी से हम नहीं खाएंगे, बाप ने भी छोड़ दिया। और माताएं इतना अच्छा भोजन बनाती है, क्योंकि विदेश में तो सब नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा बनाना सीख गई के परिवार वाले कभी नहीं कहते थे कि हाँ ये तुम्हारा खाना अच्छा नहीं। तो समझो वहां तो भाई लोग भी खाना पकाना सीख गए, यहाँ आते विदेशी शुरू शुरू में आते थे तो क्या करते थे, किचन में जाएंगे चोली किचन में और सीख लेंगे, तो गुलाब जामुन जलेबी केक्स बिस्किट्स सब बनाना सीख गए। और वहाँ तो कुक बुक मिलती है, कुक बुक से भी कई डिश बनाना शुरू कर दिया। और सफाई तो ब्राह्मणों का है ही ना, तो एडलेड में भाई लोग सेंटर चलाते थे और उन्होंने क्या किया, किचन इतना साफ रखते थे और माताओं को बाबा के कमरे में जाना होता था, किचन क्रॉस करके जाना होता था, बाबा का कमरा एंड में था। माताएं कही ये भाई लोग तो इतना अच्छा किचन साफ रखते हैं। तो क्या है कि जितनी हम सफाई रखेंगे बाहर की अंदर की, तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, खाना भी बाबा की याद में पकाने से खाने वालों का मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए मर्यादाओं का पालन जरूर करना है कोई भी हिसाब से, तो इससे क्या होगा, अपनी उन्नति होती रहेगी। और जितनी अपनी उन्नति होंगी औरों को देते जाएंगे। ओम शांति। अभी आधा घंटा योग में बैठेंगे।
Thank you. बार।